नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर में। दोस्तों, आज अंजलि नहीं आने वाली है, उसकी तबीयत खराब है।
अरे 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 नरेंद्र, ये क्या बोले जा रहे हो? दोस्तों, मैं एकदम ठीक हूँ, पर हाँ, नरेंद्र की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है।
क्या?
हाँ, अरे भाई, तुमने अच्छे खासे इंसान यानी कि मुझे बीमार जो बना दिया।
अंजलि, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था।
तो नरेंद्र, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि मेरी तबीयत खराब है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करती हूँ।
भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है अंजलि। वैसे दोस्तों, इस आदत को आपको भी अपनाना चाहिए। अगर आपको अपने अंदर किसी भी बीमारी के हल्के से भी लक्षण नजर आते हैं तो समय रहते आपको उसका इलाज तुरंत करवा लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है।
खैर दोस्तों, इस विषय पर आगे हम आपसे और बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं धारावाहिक शहर की ओर की 47वीं कड़ी।
दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना, चंदर और गजेंद्र पुलिस की नजरों से बच जाते हैं और बाद में अपना सामान वापस लेने दर्शन के कमरे पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें पुलिस का पहरा मिलता है। दोनों अपना सामान लेने के लिए कमरे की तरफ बढ़ते हैं, तभी वहां खड़ा हवलदार उन्हें रोक लेता है और उन्हें वहां से चले जाने की सलाह देता है। उधर गांव में उमेश की तबीयत बिगड़ती जा रही है। हरिंदर उमेश से मिलने उसके घर जाता है और उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, लेकिन उमेश मना कर देता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी।
ये नंबर अस्तित्व में नहीं है। ये नंबर अस्तित्व में नहीं।
क्या हो गया इस फोन को?
क्या हुआ चंदर?
यार गज्जू, कविता का नंबर ही नहीं लग रहा है।
कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कर, हो सकता है इस बार मिल जाए।
हाँ, लग गया, घंटी जा रही है।
शुक्र है भगवान का।
हेलो
हेलो, क्या आप कविता बोल रही हैं?
जी हाँ, बात कर रही हूँ, आप कौन?
कविता, मैं चंदर बोल रहा हूँ।
चंदर? कौन चंदर?
हम गांव में पड़ोसी हैं, और तुम मेरी बीवी मधु से भी मिली थी, याद आया?
हाँ हाँ, चंदर, अरे रे हाँ, तुम याद आया, मधु ने बताया था मुझे तुम्हारे बारे में।
हाँ, मैं वही चंदर बोल रहा हूँ।
पर ये नंबर तो मुंबई का है, क्या तुम मुंबई में हो?
हाँ कविता, मैं मुंबई में हूँ और बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ।
क्यों, क्या हुआ?
फोन पर नहीं बता सकता, क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ?
चंदर, इस वक्त तो मैं ऑफिस में हूँ, क्या शाम को 6 बजे तुम मुझे मुंबई सेंट्रल पर मिल सकते हो?
हाँ हाँ, मैं आ जाऊँगा।
ठीक है, फिर शाम को मिलकर बात करते हैं।
हाँ ठीक है।
अरे नहीं नहीं बेटा, चुप हो जा। क्या हुआ बेटा? और रे 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 रे, रोते नहीं बेटा, चुप हो जा।
अरे मीरा, भूखा होगा ये, दूध पिला दे से, चुप हो जाएगा।
माँ जी दूध पिलाने की कोशिश की थी, पर वो नहीं पी रहा, बस रोए जा रहा है।
मुझे तो लगता है इसे किसी की नजर लग गई है, जब नजर लगती है ना तभी बच्चा ज्यादा रोता है। तू एक काम कर, तू इसे संभाल, मैं पहाड़ी वाले बाबा को बुला कर लाती हूँ, वो ही इसकी नजर उतार सकते हैं।
चंदर, क्या कहा उसने?
यार शाम 6 बजे मुंबई सेंट्रल पर मिलने को बोला है।
भगवान करे वो हमारी मदद कर दे।
गज्जू, अभी शाम होने में तो काफी समय है, तब तक मैं डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट ले आता हूँ।
हाँ ये ठीक है, चल
चल।
ये लो चंदर, तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है।
जी डॉक्टर साहब।
देखो, तुम्हें इन्फेक्शन हुआ है और उसे STI कहते हैं।
STI? पर डॉक्टर साहब, ये इन्फेक्शन ठीक तो हो जाएगा ना?
देखो चिंता मत करो, अगर समय पर दवाइयां लेते रहोगे और सावधानी बरतोगे तो जरूर ठीक हो जाओगे।
जी डॉक्टर साहब।
और हाँ, जब तक ये पूरी तरह ठीक ना हो जाए तब तक अपनी पत्नी से जरा दूर ही रहना, वरना ये इन्फेक्शन उसे भी हो सकता है। और सावधानी के लिए एक बार उसका भी एसटीआई टेस्ट करवा लेना।
जी डॉक्टर साहब।
और वो जो तुम्हें एचआईवी टेस्ट करवाने के लिए बोला था वो करवा लिया ना?
जी डॉक्टर साहब, वो करवाना तो था लेकिन।
देखो चंदर, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ, और अगर पैसे नहीं है तो किसी भी सरकारी अस्पताल में करवा लो। सभी सरकारी अस्पतालों में ये टेस्ट बिल्कुल मुफ्त होता है।
जी मैं आज ही ये टेस्ट करवा लेता हूँ।
ठीक, बाकी मैं ये दवाइयाँ लिख रहा हूँ, ये लो, समय पर लेते रहना।
जी धन्यवाद डॉक्टर साहब।
क्या हुआ बेटा? चुप हो जा बेटा।
हे भगवान, क्या हो गया मेरे बच्चे को? किसकी नजर लग गई इसे?
अरे मीरा दीदी, ये रोशन इतना क्यों रो रहा है?
अच्छा वो मधु तो आ गई, देखना कब से रो जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। शायद किसी की बुरी नजर लग गई है।
क्या?
हाँ देखना।
आपने माजी को दिखाया इसे?
हाँ, उन्होंने ही बताया था कि किसी की नजर लग गई है। वो किसी बाबा को जानती है, उन्हीं को बुलाने गई है।
लेकिन बाबा क्यों मीरा दीदी? रोशन को तो डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था ना?
वो बाबा जी नजर उतार देंगे।
एक मिनट दीदी, जरा मुझे देखने दीजिए। बाजी, इसे तो तेज बुखार है, और देखिए इसका शरीर भी पीला पड़ता जा रहा है। हे भगवान, कहीं से पीलिया तो नहीं हो गया है?
हे भगवान, क्या हो गया मेरे बच्चे को?
दीदी अभी शांत हो जाइए, इस वक्त रोशन को किसी झाड़फूंक वाले की नहीं बल्कि डॉक्टर की जरूरत है। आप चलिए मेरे साथ।
कहाँ मधु?
आप चलिए तो सही।
अरे बौजी, आप दोनों कहाँ जा रही हो?
अच्छा हुआ छुटकी तू आ गई। तू जरा घर का ख्याल रखना, और हाँ, माँ जी लौट कर आए तो उनको बोलना कि हम दोनों रोशन को लेकर स्वास्थ्य केंद्र गई हैं।
ठीक है, बता दूंगी।
मधु, माँ जी गुस्सा करेंगी।
माँ जी से मैं बात कर लूंगी, इस वक्त डॉक्टर ही हमारी मदद कर सकता है, कोई बाबा नहीं।
ठीक है चल।
कैसी हो कविता?
मैं ठीक हूँ।
ये मेरा दोस्त है गजेंद्र।
नमस्ते।
नमस्ते। चंदर, तुम तो दिल्ली में थे ना, फिर यहाँ मुंबई में क्या कर रहे हो?
क्या बताऊँ कविता, मुंबई आया था ये सोचकर कि अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ तो लेने के देने पड़ गए।
क्या हुआ?
हम दोनों यहाँ नौकरी की तलाश में आए हैं। अभी तक हम लोग दर्शन के साथ, दर्शन याद है ना, अपने ही गांव का है।
हाँ 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 याद है, वही दर्शन ना जो फिल्मों में काम करता है?
हाँ हाँ वही, हम उसी के यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन हमें क्या पता था कि वो फिल्मों में नहीं बल्कि दो नंबर के काम करता है।
क्या?
हाँ कविता, कल ही उसके कमरे पर पुलिस ने छापा मारा था, और हम दोनों अपनी जान बचा कर निकले हैं।
क्या मैं तुम दोनों की कुछ मदद कर सकती हूँ?
फिलहाल तो अगर रहने का कोई इंतजाम हो जाए तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा, इतने बड़े शहर में सर छिपाने के लिए कहाँ जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा।
अब देखो, मेरे यहाँ पर तुम्हारे रहने का इंतजाम तो मुश्किल है।
नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर पर नहीं, बस कुछ दिनों के लिए इधर उधर कहीं रहने का इंतजाम हो जाता तो।
कुछ दिनों के लिए? हाँ, मेरी एक सहेली है माया, उसके यहाँ पर तुम्हारे रहने का इंतजाम हो सकता है। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें उसका फोन नंबर दे देती हूँ, तुम उससे बात कर लो, बाकी एक बार मैं उससे तुम्हारे बारे में बोल दूंगी, ठीक है ना?
हाँ शुक्रिया कविता।
अच्छा मेरी ट्रेन आने वाली है, तुम जरा जल्दी से माया का नंबर लिख लो।
हाँ एक मिनट, गज्जू पेन दियो।
हाँ लेना।
हाँ हाँ कविता बोलो।
9393-0028। लो मेरी ट्रेन भी आ गई, मुझे चलना होगा, तुम आज ही उसे फोन कर लेना। हाँ वो जरूर तुम्हारी मदद कर देगी। हाँ नमस्ते।
हाँ ठीक है, नमस्ते नमस्ते।
चंदर यार, हमारे पास इस वक्त एक वक्त के खाने के लिए पैसे नहीं है, और ऐसे हालत में किसी और के यहाँ जाकर रहना।
मैं भी वही सोच रहा हूँ यार, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दो दिन कैसे भी करके यही प्लेटफॉर्म पर गुजार लें, तब तक हमारे तैरने की क्लासें भी पूरी हो जाएंगी।
हाँ शायद तो ठीक कहता है, लेकिन चंदर दो दिन वो भी प्लेटफॉर्म पर।
गज्जू बस दो दिन और, नौकरी मिलते ही हम अपने रहने का इंतजाम कर लेंगे।
चलो भगवान करे ऐसा ही हो।
जय महाकाल। क्लिंग चामुंडाए बिच्छे। इस घर पर किसी की बुरी नजर है।
आइए बाबा जी, आप बैठिए, मैं अब भी अपने पोते को बुलवाती हूँ।
मीरा, ओ मीरा, जरा रोशन को लेकर आ तू, देख तो बाबा जी आए हैं।
क्या बात है माँ?
अरे छुटकी, जा जल्दी से रोशन को ले आ, जा।
माँ, रोशन को तो मधु बौजी स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई हैं।
क्या, स्वास्थ्य केंद्र?
हाँ, और मीरा बौजी भी उनके साथ गई हैं।
हे भगवान, अरे मती मारी गई है इस लड़की की तो। अरे ये ऊपरी चक्कर, नजर का खेल, वो डॉक्टर भला क्या जाने इन बातों को। अब बाबा जी आप भी कुछ कीजिए ना।
नहीं 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 नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता माता। हमें तो इस घर में कदम रखते ही आभास हो गया था कि इस घर पर किसी ने कुछ किया हुआ है, जिसका असर उस बच्चे पर है।
हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं?
हम सही कह रहे हैं, अब उस बच्चे को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं।
नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए बाबा जी, ऐसा मत कहिए, मैं अभी उसे वापस लेकर आती हूँ।
नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, हमें लगता है अब हमें वापस चलना चाहिए।
बाबा जी, बाबा जी कुछ देर और ठहरिए, बाबा जी कुछ तो कीजिए, हमें तो आप ही का सहारा है।
जय महाकाल, जय जय महाकाल।
हे भगवान, ये मधु की अकलबंदी ना, ये तो मेरे पोते की जान ही ले लेगी। आज नहीं छोड़ने वाली मैं इसे, नहीं छोड़ूंगी मैं इसे।
माँ आप कहाँ जा रही हो?
मैं स्वास्थ्य केंद्र जा रही हूँ, और वहीं जाकर मधु की खबर लूंगी। अरे मेरे पोते की जान की दुश्मन हो गई है, आज नहीं छोड़ूंगी मैं इसे, नहीं छोड़ूंगी मैं इसे।
तुम मानो या ना मानो, आइडियो सिंह मीडिया कंबाइन ने इस कार्यक्रम के जरिए हमारे सभी प्रवासी श्रोताओं को प्रवास से जुड़ी ढेर सारी जानकारी घर बैठे ही उपलब्ध कराई है।
वो तो है अंजलि, लेकिन हमें फोर्ड फाउंडेशन और इक्वल एक्सेस के वित्तीय सहयोग को भी नहीं भूलना चाहिए, जिसकी मदद से ये कार्यक्रम तैयार किया जाता है।
बिल्कुल सही नरेन।
और अंजलि, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। अब देखो ना, मुझे तो तुम्हारे बारे में पता चल गया कि तुम अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह गंभीर हो, लेकिन हमारे श्रोता अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हैं या नहीं, इस बात का पता कैसे चलेगा?
नरेन, हम अपने सामुदायिक संवाददाताओं की मदद से अपने श्रोताओं से ये बात पूछ सकते हैं।
तो फिर देर किस बात की, आइए जानते हैं अपने श्रोताओं से कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने गंभीर हैं।
हमारे क्षेत्र में बड़ी जटिल समस्या है कि लोग जो है बीमार होने पर जो है डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हमारे घरों में देवी देवता वो लोग ज़्यादा महत्व देते हैं कि इस पे बन देवता लग गया, और इन्हीं चक्करों में जो है वो हॉस्पिटल मरीज को नहीं ले सकते हैं, और न ही जो है उनकी बकिया या झाड़ फूंक से ठीक हो वो पता है, तो तब उसको जो है हॉस्पिटल ले जाते हैं, और इस प्रकार से वो जटिल समस्याओं से जकड़ जाता है। और यहाँ पर कई ऐसे केस हुए हैं जिससे जो है व्यक्तियों की मृत्यु भी हो चुकी है।
जो लोग पुराने जमाने के हैं वो ज़्यादातर इन बीमारियों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, और वो ज़्यादातर विश्वास देवी देवताओं के ऊपर करते हैं और झाड़ फूँक ऐसे करके रोगों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। जो साक्षर होते हैं वो समय पर डॉक्टर के पास जाते हैं और इसका इलाज तुरंत कर देते हैं।
गांव में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बहुत कम होते हैं और स्वास्थ्य को बहुत कम लोग गंभीरता से लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, गांव में किसी को फीवर आता है तो एक दो दिन घर में बैठे रहते हैं, जब कंडीशन ज़्यादा ही खराब हो जाती है उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं।
लोगों के स्वास्थ्य के प्रति मतलब बहुत सोचना है, जैसे आजकल लोग जैसे बीमार होते हैं तो तब लोग उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि हमारा टेम्परेचर कितना बढ़ रखा, और लोग जब डॉक्टर के पास जाके भी अपना मतलब इलाज सही नहीं होता तो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। पूजा यही करते हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, लेकिन उस देर का भी क्या करें जब मौत हो जाए इंसान की। लेकिन ये मनुष्य की गलती है, जो कि ये मतलब एक समय पर डॉक्टर के पास न जाना, एक ज़्यादा बीमार हो गया या ज़्यादा बुखार आ गया तो ये तभी डॉक्टर के पास जाना, मतलब ये इंसान की कमजोरी है।
नाराज सवेरा है, हर ओर अंधेरा है, कोई किरण तो आए कहीं से आए।
तो दोस्तों ये थे हमारे श्रोताओं के जवाब।
अच्छा नरेन, क्या तुमने सुना है कि झाड़ फूंक से भी बीमारियों का इलाज संभव है?
अरे अंजलि, ये झाड़ फूंक से कुछ नहीं होता। देखो भाई, डॉक्टर का काम एक डॉक्टर ही कर सकता है, ना कि कोई झाड़ फूंक वाला। अंजलि, क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानती हो जिसने झाड़ फूंक करने वालों का विरोध किया हो?
नरेन, न सिर्फ जानती हूँ बल्कि आज के हमारे मेहमान ने खुद ऐसे अंधविश्वासों का विरोध किया है और अपने परिवार को भी इनके चक्करों में पड़ने से रोका है।
आपका परिचय?
मेरा नाम अनुपम है और मैं ग्राम रामपुर में रहता हूँ, और जो है मेरी उम्र 23 साल है। और जो आप अभी झाड़ फूंक के संबंध में आप पूछ रही थी, पहले तो मेरे परिवार में मैंने अपने परिवार के सभी लोगों को समझाया, जो लोग कभी कभी सर दर्द, किसी को बुखार आ जाता है, लोग इसी के बहाने लोग लगते हैं कि चलो इस पे भूत लग गया, और गांव में किसी को बुलाते हैं, पंडित को या कोई भूत भगाने वाले होते हैं और उनको पीटने लगते हैं, जिससे और डैमेज होने की संभावना रहती है। तो मैंने पहले तो अपने घर में ही समझाया और इस बात को पूरी तरह समझ गए, लेकिन जो गाँव के लोग भी हैं उनको भी हमने समझाया। जब उन्होंने इस विषय में बातचीत की कि ये जो हमने कई बार सजेशन दिया उनको, नहीं इनको यहाँ दिखा लो, यहीं दिखा लो। कुछ ही दिन पहले एक औरत बीमार हुई थी, उसको डेंगू हो गया था और वो हिसार में रहती थी, उसको वहाँ से घर लाए हो, और जब वो वहाँ लोगों को बुलाए ना, और बाकी के अलावा जो दो तीन जो है और भी पंडित वगैरह आए, तो मैंने कहा कि ये तो यहीं पे मर सकती है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे। तो अब उसको फिर वो देहरादून ले गए, उसका MRI वगैरह करवाया, तो इस ढंग से लोगों को प्रोत्साहन मिला इससे कि जो है अब वो पूरी तरह लगभग ठीक हैं। तो इस ढंग से लोग आप समझ रहे हैं कि इस तरह से बचना चाहिए, अस्पतालों पर ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। अपने गाँव में तो पूरी तरह सफल रहे मुझे लगता है, लेकिन आगे भी कहीं इधर उधर जब कहीं बाजार में जाते हैं, इधर उधर लोग मिलते हैं दवाई के, कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ बुखार आ गया तो वैसे ही दवाई ले लिए, बस खा लिया, किसी ने बोला घर से ये बुखार की दवाई है इसको खा लो। इसके लिए भी हमने जो है लोगों को समझाया कि पहले टेस्ट जरूर होना जरूरी है कि क्या है, ऐसे ही नहीं वैसे ही दवाई भी नहीं खानी चाहिए। तो अंधविश्वास से तो हम इसको भी जोड़ के देख सकते हैं कि कोई दवाई भी वैसे ही खा ले तो वो समझो अंधविश्वास से ही जुड़ा हुआ है। तो इससे भी लोग जो है अब समझ रहे।
ओ बंधु रे, भर जाए दरिया, छोटी छोटी अखिया ही दिखाएंगे दुनिया। कर ले सब कुछ यहाँ, ये तेरा है जहाँ, चल जीत ले दुनिया रे।
और दोस्तों अब बारी है आज की काम की बात की,
जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड के बारे में, जो आप बच्चों को बीमारी की स्थिति में दे सकते हैं।
दोस्तों, अगर बच्चे को तेज बुखार है तो उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने से फायदा हो सकता है, इससे उसके बुखार में कमी आएगी। और अगर बुखार कम नहीं होता है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और बच्चे को सही उपचार दिलवाना चाहिए।
और अगर बच्चे को गहरी चोट लगी है तो सबसे पहले घाव को साफ पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए। यदि घाव से खून बहना जारी है तो घाव थोड़ी देर साफ कपड़े से दबा कर रखें, जिससे खून बहना रुक जाए। उसके बाद घाव पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं, जिससे सेप्टिक बनने का खतरा टल जाए।
अगर बच्चा कहीं से झुलस जाता है तो तुरंत उस हिस्से पर ठंडा पानी डालिए, या फिर आप बर्फ भी लगा सकते हैं, इससे बच्चे को तुरंत आराम मिलेगा। इसके अलावा झुलसे हुए हिस्से पर टूथपेस्ट भी लगाया जा सकता है, जो कि ठंडा होता है और तुरंत आराम पहुंचाता है।
तो दोस्तों, उम्मीद है प्राथमिक चिकित्सा के इन उपायों की मदद से आप खतरे को खत्म भले ही न कर सके, लेकिन हाँ कम जरूर कर सकते हैं। और अगर आप इस संबंध में या किसी और विषय में किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अपना सवाल हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं। नंबर है 9197176782।
चल दो छोरी मेरा पहाड़े गाँव, चल दो छोरी मेरा पहाड़े गाँव, दे बातों की भूमि वके हरी भरी डांडियों माँ, दे बातों की भूमि वके हरी भरी डांडियों माँ।
नींद छोरा
हरी भरी डांडियों माँ,
परदेसों को ठाट
खाऊं जख हिमालय की कांठी पांजीपुरा से की डाली ठंडो ठंडो पानी रौत्याला पहाड़ मंग मौज बहार बार महीना मास रंदा बार बे त्योहार जख बदरी चाक्यादार जख बदरी चाक्यादार पंच नाम देवताओं की महिमा अपार पंच नाम देवताओं की महिमा अपार
देवताओं की भूमि वक्त हरी भरी टांग मां
और दोस्तों अब आपके इंतजार को खत्म करते हुए आपके सब्र का और इम्तिहान न लेते हुए आपको बताते हैं उस खुशकिस्मत विजेता का नाम
जिन्होंने अपने खट्टे मीठे अनुभवों के जरिए जीता है आज का इनाम। तो दोस्तों आज की हमारी विजेता है मीठापुर दिल्ली से रीना रावत। नरेन रीना रावत जी लिखती हैं कि मैं शादी से पहले अपने मम्मी पापा की बहुत लाडली बेटी थी। जब मेरी शादी हुई मेरे ससुर जी की नौकरी नहीं थी। मेरी शादी के 2 साल बाद ससुर जी की मृत्यु हो गई और मेरे ऊपर सारे परिवार का बोझ आ गया जिनमें 5 भाई और 2 बहनें थीं। मेरे पति दिल्ली में नौकरी करते थे। मैंने सबकी शादी कराई, पढ़ाया लिखाया, नौकरियों पर लगवाया। इन सब में मैंने अपना खुद का मकान बेचा और कर्जा किया। आज भी किराए पर हूँ लेकिन इन सब के अपने मकान हैं। मेरी आज 15 साल की एक लड़की है। मेरे पति की सरकारी नौकरी है इसलिए अपना गुजारा चल जाता है। आगे चाहे कितनी ही खुशी आए चाहे कितने ही गम मैं अपने इन बीते हुए सालों को याद नहीं करूँगी और ईश्वर से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मेरे आने वाले दिनों में खुशियाँ ही खुशियाँ हों।
खुशियों की कोशिश में हर दिन दर्द झमेला है बातों को टिम टिम करने दो।
रीना जी आपकी इस प्रार्थना में हम अपनी प्रार्थना भी शामिल करते हैं। बहरहाल आपकी इस चिट्ठी के लिए आपको मिलता है एक खूबसूरत सा ट्रैवल बैग। और दोस्तों रीना जी की तरह आप भी ऐसा ही आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। बस इसके लिए अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों को चिट्ठियों के जरिए हमें भेजते रहिए।
चिट्ठियाँ लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम जब चले शहर की ओर 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3 सेक्टर 35 फरीदाबाद हरियाणा 121003।
इसके अलावा आप हमें अपने प्रवास से जुड़े खट्टे मीठे अनुभव ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है shaherkiur@gmail.com।
और दोस्तों अब बात संदेशों की, लेकिन उससे पहले हम अपने दोस्तों को सुनाना चाहेंगे वो संदेश जो हमें भेजा है प्रियंका नेगी ने। ये ऋषिकेश में रहने वाले अपने भाई अंकित रावत से कहना चाहती हैं कि जब वो दिल्ली में कोर्स करने के लिए आए तो अपनी बहन को फोन करके बता दे।
प्रियंका जी उम्मीद है कि आपका संदेश आपके भाई तक पहुंच गया होगा और वो दिल्ली आने से पहले आपको फोन जरूर करेंगे।
और दोस्तों अब बात आज के संदेशों की।
नमस्कार, मैं देवेंद्र रावत ग्राम भड़ज पोस्ट ऑफिस मचकंडी जनपद रुद्रप्रयाग से बोल रहा हूँ। मैं श्री सुरेंद्र सिंह रावत जी को अपना संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं ठीक ठाक हूँ और मेरा जो है बीएड का कोर्स शुरू होने जा रहा है और मुझे आपसे बहुत खुशी हुई कि आपका चिलाड़ में अपॉइंटमेंट हुआ है और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप कुशल रहें।
मेरा नाम श्रीमती शशि भंडारी छा, मैं ग्राम छोटा सुटा की रहने वाली छूँ। मैं अपनी रो दिल दे ऊँ नौ छा श्रीमती लक्ष्मी सजवाण उरा नान नजबगढ़। मैं ऊँ तो यह संदेश देना चाहना हूँ, ऊँ तो शुगर की बीमारी छा और ऊँ को आँखों को ऑपरेशन होनी था ना, पर अभी वही नहीं कि उनको शुगर घटी होलू कि नहीं घटी होलू, उन फोन भी नहीं करी तो रोतेली थोड़ा फोन कर दिया ना। हम तो चिंता लगी है कि तुम्हारा फोन भी नहीं आई, तुम्हारा आँखों ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुई, हर कन कौन हुई क्या हुई, थोड़ा हम तो फोन कर दिया।
मैं ललित सिंह दिल्ली से, मैं अपने पापा व मम्मी को ग्राम नॉन में ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि पापा जी आपकी बहू अभी नौकरी कर रही है और वो अभी वो आ नहीं सकती है, तो प्लीज़ आप उसको कॉल करिए कि वो कब तक आएगी। शायद वो अभी अभी नौकरी लगी हुई है और मेरे से बात भी नहीं हो रही है उसका, तो आप प्लीज़ उनको कॉल करिए और पूछ लें कि वो कब तक आएंगी घर।
मेरा नाम है मनोरी देवी, मैं ग्राम छोटा से उठा के रहने वाली हूँ और बच्चे मेरे दिल्ली नोएडा में रहते हैं। मैं अपने बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ, अपना काम सही करना, कोई गलत संगत नहीं करनी। मेरा पोता भी पिज्जा हाट में नौकरी करता है, उसका नाम है अमन पुंडीर। अमन पुंडीर कभी कभी दादी को भी याद करना, फोन करना, यही मैं उनको संदेश देता हूँ।
बिरवा पर चढ़ी कागा बोले तुम्हारे बालम कैसे भोले, बिना पता की चिट्ठी डाली, चिट्ठी यहाँ वहाँ है डोले हडोले हडोले हिडोले।
और दोस्तों अब हो चुका है वो समय जब हमें आपसे विदा लेने के लिए कहना पड़ता है।
सचमुच दोस्तों, आपसे बातें करते हुए समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन क्या करें, जाना तो होगा ना।
लेकिन जाने से पहले एक बार फिर आपको बता दें कि अगर आप भी अपने संदेश हमारे कार्यक्रम के जरिए अपने परिवार वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुँचाना चाहते हैं या फिर आप प्रवास के संबंध में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9197178223।
इसके अलावा हमें अपने खट्टे मीठे अनुभवों से भरी चिट्ठियां भी जरूर लिखते रहिएगा।
और अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमें अपने अनुभव ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी और पता आप एक बार फिर नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com यानी shaherkior@gmail.com।
और पता है कार्यक्रम जब चले शहर की ओर 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3 सेक्टर 35 फरीदाबाद हरियाणा 121003।
और अगर आपके पास प्रवास से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो आप वो सभी जानकारियाँ चिट्ठियों या फिर ईमेल के जरिए हमें भेज सकते हैं।
साथ ही हम अपने सहयोगियों हेवलवाणी चंबा और मंदाकिनी की आवाज भणज का भी धन्यवाद करते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि अब जाने का वक्त हो गया है तो अब मुझे और अंजलि को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते नई जानकारियों के साथ हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।
जब चले शहर की ओर, जब चले शहर की ओर।